नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश के विकास को गति देने के लिए उनकी सरकार सभी क्षेत्रों को मजबूत बनाने में यकीन रखती है, जबकि पहले की सरकारों का रुख चुनिंदा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने और अन्य को नजरअंदाज करने का था। दो दिवसीय बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में मोदी ने ये भी कहा कि भारत की बायो इकोनॉमी पिछले 8 वर्षों में 8 गुना बढ़ी है और ये 10 अरब अमेरिकी डॉलर से 21 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत जैव प्रौद्योगिकी के वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष 10 देशों की श्रेणी में पहुंचने से बहुत दूर नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में देश में स्टार्टअप की संख्या कुछ 100 से बढ़कर 70,000 से अधिक हो गई और ये 70,000 स्टार्टअप लगभग 60 विभिन्न उद्योगों से है। उन्होंने कहा कि इसमें भी 5,000 से अधिक स्टार्टअप बायोटेक क्षेत्र से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि ये इसलिए संभव हो सका क्योंकि सरकार ने व्यवसाय की सुगमता को बढ़ावा देने के साथ ही देश में उद्यमिता को मजबूती देने की दिशा में काम किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्रीय बैंक जल्द ही डिजिटल ऋण मंचों के लिए नियामकीय रूपरेखा लेकर आएगा। गौरतलब है कि इन मंचों में कई अनधिकृत और अवैध हैं। डिजिटल कर्ज ऐप के कुछ परिचालकों द्वारा कर्ज लेने वालों के उत्पीड़न के कारण उनके बीच कथित रूप से आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। दास ने भारतीय व्यापार विषय पर एक व्याख्यान देते हुए कहा, मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम एक व्यापक नियामकीय ढांचे के साथ सामने आएंगे जो डिजिटल मंचों के जरिए ऋण देने के संबंध में हमारे सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम होगा। इन मंचों में कई अनधिकृत और बिना पंजीकरण के चल रहे हैं। मुझे कहना चाहिए कि ये अवैध है। इस व्याख्यान का आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने किया था। दास ने बुधवार को कहा था कि बिना पंजीकरण के डिजिटल ऋण देने वाले ऐप से कर्ज लेने वाले ग्राहकों को किसी भी तरह की समस्या होने पर स्थानीय पुलिस से संपर्क करना चाहिए। उन्होंने ये स्पष्ट करते हुए कहा कि केंद्रीय बैंक केवल उसके साथ पंजीकृत संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करेगा। गवर्नर ने कहा कि RBI की वेबसाइट पर उन ऐप की एक सूची है जो उनके साथ पंजीकृत है। ऊंची मुद्रा स्फीति और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण घरेलू शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव के बावजूद मई में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 8,529 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश हुआ। ये लगातार 15वां महीना है जब इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश का प्रवाह सकारात्मक रहा है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के प्रति निवेशकों का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगातार निवेश आ रहा है। उद्योग निकाय एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि मई का ये आंकड़ा अप्रैल में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 15,890 करोड़ रुपए के शुद्ध निवेश की तुलना में अधिक है। इक्विटी यानी शेयर में निवेश से जुड़ी योजनाओं में शुद्ध रूप से निवेश मार्च 2021 से ही बढ़ रहा है। यह निवेशकों के बीच ऐसी योजनाओं को लेकर सकारात्मक धारणा को दर्शाता है। इससे पहले इन योजनाओं से जुलाई 2020 से लेकर फरवरी 2021 के दौरान लगातार 46,791 करोड़ रुपए की राशि निकाली गई थी। अर्थव्यवस्था में सुस्ती और ऊंची मुद्रा स्फीति के बावजूद हैदराबाद में संपत्ति का पंजीकरण मई में सालाना आधार पर 152% बढ़कर 6,301 इकाई पर पहुंच गया। महादर महा आधार पर शहर में संपत्ति का पंजीकरण 17.6% बढ़ा है। नाइट फ्रैंक इंडिया ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। रियल एस्टेट सलाहकार कंपनी ने कहा कि सालाना आधार पर मई में संपत्ति के कुल लेन देन 146% बढ़कर 3,058 करोड़ रुपए पर पहुंच गए। महादर महा आधार पर मूल्य के हिसाब से संपत्ति के लेन देन 9.9% बढ़े। इस तरह जनवरी 2022 से हैदराबाद में पंजीकृत हुई संपत्तियों का कुल मूल्य 15,071 करोड़ रुपए बैठता है। हैदराबाद के आवासीय बाजार में 4 जिले हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी और संगारेड्डी आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने नकदी संकट से जूझ रही पाकिस्तान सरकार से चीन के बिजली संयंत्रों का करीब 300 अरब रुपए का भुगतान करने से पहले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के बिजली सौदों पर एक बार फिर से बातचीत करने को कहा है। एक मीडिया रिपोर्ट में ये जानकारी मिली। रिपोर्ट के मुताबिक अभी पाकिस्तान को अपनी ढहती अर्थव्यवस्था को समर्थन के लिए लगातार अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगनी पड़ रही है। इस मुद्दे पर कतर की राजधानी दोहा में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ बातचीत जारी है। समाचार पत्र द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने एक रिपोर्ट में बताया कि IMF ने पाकिस्तान सरकार से कहा है कि वह चीन के बिजली संयंत्रों को 1994 और 2002 की बिजली नीतियों के तहत स्थापित बिजली संयंत्रों जैसा ही रुख अपनाए। इन संयंत्रों को CPEC रूपरेखा करार के तहत स्थापित किया गया था। IMF की ये मांग पूर्व में स्वतंत्र बिजली उत्पादकों के साथ समझौते के शर्तों पर फिर से बातचीत करने से चीन के इनकार के बाद आई है। सूत्रों के मुताबिक IMF को लगता है कि चीन के स्वतंत्र बिजली उत्पादक पाकिस्तान से अधिक शुल्क वसूल रहे हैं और इन सौदों पर नए सिरे से चर्चा करने की जरूरत है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।